समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मुनीश, एंड नमस्कार टू आर लिसनर्स, एंड अ गुड डे टू ऑल आर लिसनर्स। वेल, गुड आफ्टरनून ऑल्सो। द सन इज स्टिल अप, सो ऑल ऑफ द ग्रीटिंग्स फॉर द डे टू ऑल आर लिसनर्स। वेल, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM, एंड मी एंड मुनीश, वी आर एब्सोल्यूटली थ्रिल्ड एज वी हैव फॉर यू हेडलाइंस। फर्स्ट, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। विल वी हैव रिपोर्ट्स, देन कैप्सूल्स, एंड आर ट्रिब्यूट्स विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो लिसनर्स, दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग यू टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट रफली हाफ एन आवर। वेल, वी आर फर्स्ट बिगिनिंग विद द न्यूज हेडलाइंस। फर्स्ट, Prime Minister Narendra Modi pitches for dialogue and diplomacy to restore peace in the West Asia region.
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार।
Farmers' income increased up to 8 times due to center's sustained efforts, says Union Agriculture Minister.
असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी।
66 people killed in Colombian military aircraft crash, rescue operations underway.
और बेलारूस की आर्याना सबालेंका मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में।
So now this is our discussion segment, Dateline India, and we told you we will be talking about empowering women farmers in agriculture.
दोस्तों, आज की विशेष प्रस्तुति है ये, जिसमें स्वागत है आपका, जहां हम बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि में महिलाओं की भूमिका की। ग्रामीण आजीविका की बात करें तो दोस्तों, महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वास्तव में लगभग 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
सो मनीष, दैट्स अ ह्यूज नंबर मनीष, एंड वेल, बट दैट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज they in the way that they contribute. Well, around 33% of these women, when we talk about 80% of the share, well, 33% of these women work as agricultural laborers, working on farms and sowing seeds, harvesting crops and ensuring that food reaches our plates. And not just that, well, about 48% of rural women are self-employed farmers. They are not just helping hands but decision makers, managing farms, also livestock and resources.
इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद उनके काम को दोस्तों अक्सर अनदेखा और कम आंका जाता है। भूमि स्वामित्व, ऋण और आधुनिक तकनीक तक पहुंच आज भी कई महिलाओं के लिए एक चुनौती बनी हुई है। दरअसल इन महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और समान अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बदल सकता है। क्यों शगुन?
एग्जैक्टली मनीष, सो देयर इन्वॉल्वमेंट इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द एंटायर एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन एंड कंपेसिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, प्री हार्वेस्ट ऑपरेशंस, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एज वेल एज मार्केटिंग, एंड कॉन्सिक्वेंटली विमेन्स एंगेजमेंट इट इज सेंट्रल टू ड्राइविंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी, ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड्स।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भूमिका को मान्यता दी है। वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में नामित करते हुए महिला किसान कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026 सीक्स टू हाईलाइट वुमेन्स कंट्रीब्यूशंस टू एग्रीकल्चर while also promoting equitable access to land, resources, technology, finance and markets. The year seeks to mobilize governments, development partners, civil society, and also the private sector to promote inclusive policies and targeted actions that enhance the visibility, recognition, and economic empowerment of women farmers worldwide.
दोस्तों, कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन जिसका केंद्र बिंदु था प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना. इसने कृषि विकास में महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है. 3 दिवसीय GCWAS 2026 का आयोजन 12 से 14 मार्च तक नई दिल्ली के ICAR कन्वेंशन सेंटर में हुआ और इस सम्मेलन में दोस्तों भारत और विदेश से 700 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी, महिला, किसान, स्टार्टअप्स और छात्र भी शामिल थे.
Wow. And the conference focused on strengthening gender-responsive policies, promoting women's leadership and economic inclusion, advancing technology-driven, climate-smart and women-friendly agricultural innovations. And this also featured a Women Farmers Forum, also a youth forum, and an exhibition showcasing women-oriented technologies and startup innovations. So overall, the conference aimed to generate actionable recommendations, global best practices and a future roadmap for building more inclusive, sustainable and equitable agri-food systems.
दोस्तों, भारत की कृषि प्रगति में महिला किसान लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. कृषि और संबंधित गतिविधियों में उनकी बढ़ती हुई भागीदारी को विभिन्न सरकारी पहलों के जरिए मजबूत किया जा रहा है, जो संसाधनों, प्रौद्योगिकियों और बाजारों तक उनकी पहुंच को बढ़ाती हैं. कृषि अवसंरचना कोष, एकीकृत कृषि विपणन योजना, कृषि विपणन अवसंरचना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण के जरिए महिला किसानों को वित्तीय सहायता और ऋण तक उनकी पहुंच प्रदान करती हैं.
So Manish, let me add other such initiatives as well. First, Namo Drone Didi program, another one, National Beekeeping and Honey Mission, also Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. Well, these collectively strengthen women's participation by promoting technology adoption as well as skill development and livelihood diversification. Together, these initiatives strengthen women participation in the agricultural value chain by improving infrastructure, enhancing market linkages and supporting efficient post-harvest management.
और प्रशिक्षण तथा ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने के लिए शगुन, कृषि सखियों के नाम से जाने जाने वाली महिला अर्धविस्तार कार्यकर्ताओं का एक समर्पित दल भी तो विकसित किया गया है.
जी,
दरअसल कृषि सखियां वो महिला किसान हैं जिन्हें जमीनी स्तर पर टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए अर्धविस्तार पेशेवरों के रूप में प्रशिक्षित किया गया. वो किसानों की मित्र के तौर पर काम करती हैं. प्राकृतिक खेती और मिट्टी के यानी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में घर घर जाकर मार्गदर्शन, ज्ञान और सहायता प्रदान करती हैं. समुदाय आधारित विस्तार को मजबूत करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित करने का काम किया है.
70,000. एंड लेट्स नाउ टेल यू अबाउट द पोस्ट ट्रेनिंग फेज. So, Krishi Sakhis conduct awareness programs across self-help groups, schools, Anganwadis, Gram Panchayats and village organizations. So, their role is to create a ripple effect that encourages the widespread adoption of environmentally friendly, economically viable agricultural practices. So, this leads to improved soil health, enhanced productivity and better livelihoods for farming households by linking rural women farmers to extension services. And government program Krishi Sakhis plays a crucial role in strengthening participation, improving skills and empowering women in agriculture.
Well, Shagun, 70,000 Krishi Sakhis and I must say still counting.
Still counting,
yeah.
Right.
So, Kisan Utpadak Sangathan, yani FPO, Bharatiya Krishi ka ek tarah se dekhen to hum chehra badal rahe hain. ये ऐसे समूह हैं जहां किसान एक साथ मिलकर अपने कृषि उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय को अर्जित करने और एक साथ मजबूत होने में मदद मिलती है. दरअसल एफपीओ की असली ताकत उनकी समावेशिता पर केंद्रित प्रतिबद्धता तो है.
वेल यस, एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, विमेन फार्मर्स, Self-help groups and members from scheduled castes and scheduled tribes are also encouraged to participate. And well, if we speak about participation, Munish, women are at the heart of this movement. So every FPO has at least one woman on its board of directors. Even more impressive, well, over 1,175 FPOs in India are entirely women-led, with 100% women's shareholders. Well, this and another 1,084 FPOs have seen between 50% to 99% women members. How great!
Indeed it is, and we can say in conclusion, like Shagun, when women farmers thrive, communities grow stronger and food security improves for everyone.
Well, well said. So let's acknowledge and support the incredible efforts of women in agriculture, women, Nari Shakti. Well, they are truly the silent strength behind our nation's progress. And empowering women in agriculture, it is crucial for enhancing, we have told you so many things, productivity, bolstering rural livelihoods and promoting inclusive economic growth. Targeted interventions such as gender-responsive schemes, skill development programs, women-friendly technologies and institutional support, this plays a crucial role in reducing and enhancing, well, incomes and enabling the women to become leaders across the value chains.
बिल्कुल शगुन, सही कहा आपने. महिला नेतृत्व वाली किसान संस्थाओं का अगर हम देखें विकास और कृषि एवं स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण के प्रयास, तो महिलाओं को उत्पादकता बढ़ाने, आजीविका के विविधीकरण करने और निर्णय लेने में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में ये सक्षम बना रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष की परिकल्पना के अनुरूप कृषि में महिलाओं के कौशल, उनकी दृश्यता और नेतृत्व को बढ़ावा देने से ग्रामीण आजीविका और लचीलापन मजबूत होगा ही, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.
Exactly. And in essence, when women in agriculture are supported and empowered, it accelerates economic growth and builds more resilient and inclusive rural communities. So listeners, we'll also remind you, well, today it's World Tuberculosis Day. This day is observed today. It's 24th of March, and this is observed every year to raise awareness about the devastating health, social and economic consequences of tuberculosis and to step up efforts to end the global epidemic. Doctors, scientists and researchers have highlighted the importance of early action against TB. Dr. Anant Mohan, Professor and Head, Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, AIIMS, New Delhi, he has said that the government's National Tuberculosis Eradication Program, it is helping to strengthen the country's fight actually against tuberculosis. He has said the program aims to reduce the incidence of TB in a graded manner over the next 10 to 15 years.
Now there is a National Tuberculosis Eradication Program going on, in which there are certain ambitious goals have been set up to reduce the burden and the incidence of tuberculosis in a graded manner over the next 10 to 15 years. And as part of this, several programs are ongoing by the Government of India as well as by this particular program. This includes diagnostics, so a lot of advancements and studies and research is going on in diagnostics, therapeutics, development of new treatment modalities, undergoing trials, trying to implement them at the population level on the ground, nutritional support, and all these things are happening. So at various levels, a lot of significant efforts are ongoing at various levels to try and reduce the burden of this disease, early pickup and early treatment and more effective treatment. There are several research and other activities going on at AIIMS also as far as TB is concerned. Again, heavy research is going on in the field of diagnostics at various levels, at the molecular level, at the genetic level, in order to try and pick up tuberculosis early, also to try and develop diagnostic modalities which are as good or maybe better than the currently available diagnostic modalities and test them in patients.
Well, Dr. Mohan said people who are immunocompromised, for example, those who are suffering from cancer, uncontrolled diabetes, kidney failure or other chronic disorders, are the most vulnerable at the risk of developing TB.
Tuberculosis is probably the commonest and the most rampant infectious disease in our country right now, and has been for last several decades. It is caused by a bacteria, Mycobacterium tuberculosis, and many other types of bacteria cause related diseases. The common mode of spread is by inhalational route or spread by droplet infection, especially by coughing. So this is the commonest route spread in the lungs, which is infectious and can be transmitted from person to person. Apart from that, there are many other ways also by which it can be transmitted, although that is quite rare. TB actually can happen to anybody. It doesn't differentiate or distinguish between any socioeconomic strata or anything else. Tuberculosis can occur without symptoms, although it is not that common, but it is possible. This usually happens to those people, again, who are immunocompromised.
So listeners, we'll also tell you that as part of our series, People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to agricultural scientist Dr. Ashok Kumar Singh. He will be honored with Padma Shri for his contribution in the field of science and engineering.
हमारे प्रेरणा स्रोत विशेष रूप से मैं कहूं तो पिताजी हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में थे, किसान थे, कृषि को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और हमारे बड़े भाई डॉक्टर ऋषि मुनि सिंह, उन्होंने भी कृषि की पढ़ाई की थी और 1962 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से वो पीएचडी करके आए थे और जेनेटिक्स में ही पीएचडी उन्होंने किया था। मेरा स्रोत विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया। 35 वर्षों का जो कार्यकाल हमारा रहा पूसा संस्थान में, चावल से हमारा नाता कभी छूटा नहीं। शोध में मैं हमेशा जुड़ा रहा और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में पूसा संस्थान में कार्य कर रहा हूं। हमने अभी हाल में ही दो ऐसी किस्में विकसित की हैं जो कि धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।
So to listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 PM. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का क्या कुछ है खास उनके पास आज। दोस्तों, श्रीलंका के सबसे पुराने हिंदू शिक्षण संस्थान विवेकानंद कॉलेज ने आज बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से अपनी शताब्दी मनाई। ये समारोह भारत की आध्यात्मिक विरासत से गहराई से जुड़े हुए एक शताब्दी के ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करता है। इस अवसर पर बोलते हुए भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने शिक्षा और सांस्कृतिक जागृति के बीच उस अटूट बंधन पर प्रकाश डाला जिसका प्रतिनिधित्व ये संस्थान करता है। उन्होंने कहा कि संस्थान के संस्थापकों ने भारतीय संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की श्रीलंका यात्रा से प्रेरणा ली, जो ज्ञान के एक वृक्ष के रूप में विकसित हुई। इस समारोह का विशेष महत्व था क्योंकि कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं उसी स्थान पर अपना प्रेरणादायक भाषण दिया था जहां आज ये विद्यालय मौजूद है। दरअसल उनकी यात्रा के लगभग 3 दशक बाद उनके सम्मान में स्थापित ये महाविद्यालय तब से हिंदू शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक भी बन चुका है। तो अब और अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने संवाददाता से।
In Colombo today, Vivekananda College, which is Sri Lanka's oldest Hindu educational institution, marked 100 years of enlightened learning and service. The college traces its inspiration to the momentous visit of Indian philosopher and saint Swami Vivekananda in 1897, who is believed to have addressed devotees on the very grounds where the school now stands. At the centenary celebrations, the High Commissioner of India to Sri Lanka, Santosh Jha, hailed the college as a testament to the foresight and dedication of its founders, a seed of knowledge that has grown into a strong and enduring tree. The event resonated with traditional performances and tributes, reaffirming the institution's place as a bridge of faith, culture and education between India and Sri Lanka. For Parikrama, Ahmed Muin Farooqi from Colombo.
So in Keralam, the sweep campaign continues to urge citizens to recognize the power of vote and participate actively in the democratic process. Let's find out more details, well, from our correspondent.
In a vibrant push to encourage maximum voter participation, innovative awareness campaigns are progressing across Kerala under the SWEEP initiative. In Thiruvananthapuram, the campaign has taken to the skies, quite literally, at the scenic Parkala Cliff, paragliding events have been organized, blending adventure with a powerful message. Every vote matters. Moving north to Kannur, the campaign title Inkit Kannur brought life to Payyambalam Beach with the theme Your Vote, Your Tomorrow. Awareness programs engage the public, reminding them of the power they hold in shaping the future. In Kasargod, Paliyaparamba Beach witnessed a unique gathering of voters and children. The shoreline came alive with kite flying and Zumba dance and turning water awareness into celebration of community spirit. Thrissur added a thoughtful touch with a water awareness night walk. The event began at Nehru Park, accompanied by the rhythmic beats of a chendamelam performed by differently abled artists from Mercy Home and making it both inspiring and inclusive. At Malappuram, Kottakunnu witnessed engaging activities including shootout competition, quiz competition, and photo booths and making water awareness interactive and enjoyable. Meanwhile, at Pavanasham, parasailing events added excitement to the campaign. Even scuba diving was organized to creatively spread the message. Through these diverse and energetic initiatives, the message is clear. Recognize the power of your vote. As April 9 approaches, people are urged to step forward and make their voices heard. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
Let's head to Sikkim now. So Sikkim will host 49th Yonex Sunrise Junior National Badminton Championship in November 2026. A report.
Sikkim has been selected as the host venue for the 49th Yonex Sunrise Junior National Badminton Championship, individual and team under 19, 2026. The tournament is scheduled to held from 14th to 21st November this year. Jacob Kaling, president of the Badminton Association of Sikkim, expressed pride over the state being chosen to host the prestigious national level event for the very first time. The championship, organized under the aegis of Badminton Association of India, will see top junior players from across the country competing at the highest level. Kaling extended his gratitude to Chief Minister of Assam and President of the Badminton Association of India, Himanta Biswa Sarma, along with Sanjay Mishra, General Secretary, and the entire Executive Committee for placing their trust in Sikkim. The championship is expected to be a landmark event for Sikkim's sporting landscape, offering local athletes and a rare opportunity to witness and compete alongside some of the finest young badminton talents in the country. Kaling also called upon the badminton fraternity and the wider sporting community to extend their support in making the prestigious tournament a grand success. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok for Parikrama.
So now in some business news. Benchmark domestic equity indices surged nearly 2% today. The Sensex soared 1,372 points or 1.9% to close at 74,068, while the Nifty climbed 400 points or 1.8% to settle at 22,912.
और दोस्तों अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि Jayanti ya phir Jan-din.
On the 24th of March 1902, the revolutionary organization Anushilan Samiti was formed by freedom fighter Pramathnath Mitra in Bengal Presidency. It was headed by Barindra Kumar Ghosh, the younger brother of Sri Aurobindo Ghosh. A number of nationalists were associated with it at various times, notably Aurobindo Ghosh, Bhupendranath Datta, Deshbandhu Chittaranjan Das, Surendranath Tagore, Pulan Bihari Das, Sarla Devi, Rash Bihari Bose, Bagha Jatin, Sachendranath Sanyal, Jatin Das, and Bipin Chandra Pal.
Yeah.
From 1907, the members belonging to the Anushilan Samiti were very active in revolutionary activities. Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal began the Bengali nationalist weekly Jugantar, New Era, and its English counterpart, Bande Mataram, in March 1906, that openly preached armed rebellion to create the necessary revolutionary mentality among Indians. The Muzaffarpur killing is one of the most famous events in the history of the revolution in Bengal. Both Khudiram Bose and Prafulla Chaki became heroes among the masses of Bengal.
दोस्तों आज पुण्यतिथि है राधिका रमण प्रसाद सिंह की जिनका हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान है। उन्होंने कहानी गद्य काव्य उपन्यास संस्मरण और नाटक इत्यादि सभी विधाओं में साहित्य की रचना की और अपनी गहरी छाप छोड़ी।
Well, today it's also the birth anniversary of a gifted musical genius, Muthuswami Dikshitar. He introduced the Hamsadhwani Rag, played a major role in popularizing the violin as an apt accompaniment for Carnatic concerts and composed Kirtanas in all the 72 Melakartha Rag.
और दोस्तों आज ही है जन्मदिन लोकप्रिय अभिनेता इमरान हाशमी का जिनका दरअसल पूरा नाम है सैयद इमरान अनवर हाशमी भारतीय फिल्मों के अभिनेता जिन्होंने कई सफल थ्रिलर भूमिकाओं में भूमिकाएं अपनी निभाई जिनमें खास तौर पर लोग याद करते हैं मर्डर जहर आशिक बनाया आपने कलयुग और अक्सर को लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बहादुर कस्टम अधिकारी की भूमिका भी निभाई है एक वेब सीरीज में और उसके लिए उन्हें बहुत सराहा जा रहा है आजकल जिसका नाम है तस्करी
ये कार्गो क्लियर है अगर कस्टम्स को शक है हम कर सकते हैं दिस इज डिप्लोमेटिक कार्गो वी कैन नॉट ओपन इट सो वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट दिस कार्गो कंटेन्स गोल्ड एंड वी नीड टू इंस्पेक्ट इट व्हाट्स द प्रॉब्लम हम डिप्लोमेटिक कार्गो को चेक नहीं कर सकते हैं बट यू नो दैट चेकिंग तो होगा मिस्टर प्रकाश कुमार एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से चेकिंग तो होगा
So listeners, today we're also remembering director and screenwriter Pradeep Sarkar. Well, we best know him for directing Parinita, the 2005 film. And well, he was a recipient of the Abbey Award and the National Film Award as well. So his body of work spans movies, music videos and over 1,000 commercials.
दरअसल दोस्तों अपने करियर की शुरुआत की थी उन्होंने विज्ञापन की दुनिया से फिल्मों में आने से पहले वो 1000 से अधिक ब्रांड कमर्शियल्स और कई लोकप्रिय संगीत वीडियो जैसे अगर आपको याद हो शुभा मुद्गल का अब के सावन तो उन्हें वो निर्देशित कर चुके थे और 2005 में फिल्म परिणीता से निर्देशन की शुरुआत की जिसने उन्हें रातों रात बुलंदियों के आप कह सकते हैं कि एक मकाम को दिया और लोग उन्हें आज भी याद करते हैं उनकी उस फिल्म के लिए तो क्यों ना शगुन सुना जाए उसी से उस गीत का ही अंश
दिल की जो बातें हैं बातें जो दिल की हैं
दिल ही में रखना पिया
लब तो ना खोलूं मैं खोलूं ना लब तो पर
आंखों से सब कह दिया पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले
बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना
Now just imagine एक लड़की नकचड़ी सी थोड़ी सी पागल यू नो स्लाइटली मैड लाइक यू
अच्छा
और एक लड़का
और लड़का बड़ा समझदार है ना
नहीं नहीं लड़का तो उससे भी बड़ा पागल वरना उससे प्यार कैसे करता और एक दिन चर्च में
I
that's Vidya Balan's laughter and Saif Ali Khan and Vidya Balan's conversation there.
बिल्कुल शगुन, वो फिल्म का दृश्य मेरी आंखों के सामने एकदम जैसे तैर गया. दोस्तों, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए मुनीश और शगुन को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट. दीजिए आज्ञा.
नमस्कार.